તારીખ 2/5/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 86 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 476
આપણું જે સ્વાધ્યાયની છે એમાં પાછળ શ્રીમદ રાજચંદ્ર હિન્દીમાં એટલે માટે લીધું છે કે અમુક હિન્દી ભાષી ભાઈઓ ગુજરાતી નથી સમજી શકતા, હિન્દી ભાષા અમુક શો નથી સમજી શકતા, સમજે છે હિન્દી જરફ કરાવી છે. પત્રાંક 86 પહેલા પત્ર હે કરેંગે. જીવ કો પરિભ્રમણ હેડિંગ હૈ 86 નંબર પર. મહાત્માઓ કો અભેદ ભાવ સે નમસ્કાર. મિત્ર મહાત્મા એ બાત કે વિશેષતા હૈ, એ વિશેષણ લગાયા હુઆ કે જો ભી મહાપુરુષ હોતે હૈ વો નિષ્પ્રભ હોતે હૈ, વો કભી કિસી સે સ્પ્રહા નહીં રખતે. नहीं रखने का कारण यह है, अंदर में जिसने परिपूर्ण आत्मस्वरूप अनुभव में लिया कि मैं मेरे स्वरूप से ही जब पूर्ण हूं तो पूर्ण पदार्थ को किसकी अपेक्षा हो सकती है? अगर अपेक्षा रहती है तो पूर्णता कहां रही? जबकि आगम में और ज्ञानियों के वचन में वो बात प्रसिद्ध है कि आत्मा में सब कुछ भरा हुआ है, इतने गुण हैं और इतने अनंत गुण हैं कि जिस कारण से आत्मा को किसी की अपेक्षा रखने की कोई जरूरत नहीं है. अपेक्षा कहो, स्वभाव कहो, दीन वृत्ति कहो, सब एक ही बात है. जिसने अपने स्वरूप को परिपूर्ण रूप से अनुभव में लिया कि मैं स्वरूप से ही परिपूर्ण हूं और आत्मा में कोई कमी नहीं, जिस कारण से आत्मा को कुछ बाहर अपेक्षा रखनी पड़े, बाहर मैंने अपने स्वरूप को छोड़ करके, अपने स्वरूप को छोड़ करके किसी की अपेक्षा रखनी पड़े, ऐसा आत्मा नहीं है. आत्मा में सब कुछ भरा है, पूरा भरा है, अनंत गुण भरा है. इसलिए जो स्वामीभावी महात्मा होते हैं वो तो निष्प्रभ ही होते हैं, उनको कभी किसी की प्रवाह नहीं होती. उसको स्प्रवाह नहीं बोली जाती, उसको कारुण्य वृत्ति बोलते हैं. शिष्य हो बिना शिष्य हो कोई बात नहीं, जगत के जीव को दुखी देखकर कारुण्य वृत्ति आती है, पर वो तो जंगल में जाने वाले मुनिराज को भी आई है. वो परिवार समाज को छोड़कर के जंगल में चले गए तो वहां भी ताड़ पत्र मिला तो उस पर शास्त्र लिखते गए, लिख के छोड़ते गए, परिग्रह नहीं रखा था लेकिन लिखकर छोड़ते गए कि ये सुखी होने का उपाय है, मैं ऐसे सुखी हुआ हूं और जिसको सुखी होना है उनके लिए उपाय मार्ग है. ऐसी कारुणी वृत्ति सबसे गुण स्थान तक विकल्प में आती है. सातवें गुण स्थान से तो विकल्प होता नहीं, 7, 8, 9, 10 कोई ऊपर के गुण स्थान में तो सब निर्विकल्प गुण स्थान होने से यहाँ का तो कोई सवाल नहीं है. लेकिन छठे गुण स्थान, चौथे गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान, छठे गुण स्थान में ऐसी कारुणी वृत्ति आती है. और दुख से छूटने का उपाय इलाज है तो दिखाते जाते हैं, उतना ही नहीं सुखी होते होते वो दिखते हैं, दुख से मुक्त होते होते तो लिखते जाते हैं कि मैं इस तरह से मुक्त हो रहा हूँ, दुख से सुखी होना है तो यही इलाज है, तो उसको सुराने दी जाती है, वृत्ति करुणा निष्कारण करुणा, वो भी कैसी करुणा है, निष्कारण करुणा है, क्यों कि ऐसा उपदेश देने के बदले वो कोई लेना चाहते लेना नहीं चाहते, जो मुनिराज होते हैं तो आहार भी अपना कारण से बनाया हुआ नहीं लेंगे, तो फिर दूसरी चीज का तो सवाल नहीं रहता है, ऊपर की चीज आ गई, शरीर को टिकने के लिए आहार पानी 24 घंटा में एक दफे वो ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, वो भी अपने कारण से बनाया हुआ तो वो नहीं लेते, मतलब अपना रहने का खाने का कोई भी प्रकार का अपना प्रवृत्ति के लिए कोई भी प्रोविजन वो स्वीकार नहीं करते, प्रोविजन मैंने व्यवस्था, मेरे लिए कोई व्यवस्था आपको करनी नहीं है और आप करेंगे तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा, ऐसे निष्प्रभम आत्मा को यहाँ पर नमस्कार किया है गोपाल जी,
जो मोक्ष जी प्राप्त करने के लिए जो तो वो मोक्ष
तो उनको अपना आत्मकल्याण करने की गरज है, जंगल में जाकर के खोज ला, ये चीज हर जगह तो मिलती नहीं, जो मुक्त होते हैं वही मुक्त होने के इलाज बता सकते हैं, दूसरे तो बता नहीं सकते, तो वो खोजेगा जिसको गरज है, जिसको संसार का दुख से मुक्त होने की गरज है वो तो खोजेगा,
इतना जंगल में जाना कितनी आतुरता होती होगी, वो हमसे लगता होगा,
दुनियादारी में देखो ये खोजी वृत्ति वाले जीव होते हैं ना, जैसे अमेरिका मिला, कब मिला अमेरिका इतिहास देखो तो, कोई आदमी समुद्र में अपना होड़ी लेकर के जाता जाता वो टापू पर पहुंच गया, वहां से अमेरिका में पहुंच गया, तो इसका मतलब क्या है कि जिसको खोज है वो न समुद्र देखता है न जंगल देखता है, जंगल में तो डूबने के अवकाश नहीं है, समुद्र में तो डूब जाता है, फिर भी समुद्र का सफर करता है कि नहीं करता है, जिसको जो चाहिए उसके लिए सब कुछ करेगा, हाँ ऐसा भी मनुष्य होता है, तो उनको अगर महात्मा मिल जाता है तो अवश्य अवश्य उनका उद्देश्य उनको परिणमन हो जाता है, और जिसको मुफ्त में मिलता है उनको कीमत आती, सोना निकाल दिया, सोना निकाल दिया, लेकिन खोज करके जंगल में जाना पड़ता तो सुन करके निकलेगा, वो सुन करके नहीं निकाल, अंदर में उतार लेगा, ऐसी बात है, हाँ कठिन तो है, जंगल में मुनिराज को खोजना वो बात तो कठिन वाली है, हार्ड लाइफ तो है ही, खाने पीने की व्यवस्था हो नहीं हो, नहीं मिले तो भी निर्मलता है उनको, तो विद्यासा के कारण से निर्मलता आई,
ज्ञानी जीवन का जितना मूल्यांकन है,
हाँ इतना मूल्य है कि अपने प्राण से भी अधिक मूल्य होता है, कितना मूल्य होता है अपने प्राण से भी अधिक, अपना प्राण निशावर करता है, अगर ज्ञानी की मानी बचती है मिलती है इसकी सुरक्षा होती है। हाँ, तो ज्ञानी की सुरक्षा हो, तो ज्ञानी के माने की सुरक्षा होगी। ज्ञानी होते तो उनके माने होती है, ज्ञानी नहीं होते तो माने कहाँ से होगी। ज्ञानी की सेवा में कोई रहता है इस कारण से रहता है कि उनके माने, जैसे दृष्टांत में गुरुदेव श्री का वो पिछले सालों में जो है तबियत स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, वो कुछ नहीं चाहते थे, वो तो समझते थे तो जब छुटना है तो छुटना है, पर उधर तो जाना है, उधर स्वर्ग में तो जाना है, ऐसे दिखाते थे उधर जाना है स्वर्ग में, तो वो कुछ अपनी परवाह नहीं करते थे। सेवा करने वाले अवश्य परवाह करते, वो खुद अपनी परवाह नहीं करते थे। तो इसका मतलब क्या है, उनको तो अपना देह पर उतना अनुराग नहीं है, देह पर उनको देहाध्यास नहीं होता, लेकिन जिसको इसकी वाणी की गरज है उनको लगेगा कि अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो उनका उपदेश सुनने को मिलेगा, तो अपने को लाभ मिलेगा, बहुत ही इस भाव में क्या तो अपना अपनी जरूरत में करने का दिन पर छोड़ी न रहता है, भूख लगी चलो और कर्म के अधीन आएगा, ऐसा करते हैं हम। हाँ, हमारे परिवार का निर्वाह करना है, अधीन हो जाएगा, हमको कुछ नहीं करना है, न व्यवसाय करना है, न नौकरी करना है, न कोई परिश्रम करना है, न कुछ करना है, तो बैठ जाएगा तो वितराग हो जाएगा, तो बैठ जाएगा तो वितराग हो जाएगा, अच्छी बात है, ऐसे तो सब वितराग होकर के विद्यालय में चले गए। लेकिन जिसको राग की योग्यता है उनकी चिंता ऐसी समझते हुए भी रहेगी, समझते हुए तो भी रहेगी, प्यास लगे पानी का गिलास आएगा तब आएगा, प्रारब्ध में प्रारब्ध कर्मों से पानी का गिलास आएगा, ऐसा रखते हैं या घर में जहाँ पानी पड़ा है यहाँ से गिलास भर के पी लेते हैं, कर्म का अधीन तो स्वयं गिलास आएगा। हाँ, तो एक समझ होना एक बात है, अभिप्राय होना एक बात है, इसकी चिंता होना वो दूसरी बात है। स्थिरता छठे गुण पांचवें गुण स्थान से शुरू होती है आंशिक रूप में, और छठे गुण स्थान में बनती है, चतुर्थ गुण स्थान और मुमुक्षु की भूमिका में समझ सही हो सकती है, अभिप्राय सही हो सकता है, स्थिरता नहीं होती, इतनी स्थिरता नहीं बन पाती।
खुद को थोड़ा रोग हो, खुद को रोग हो थोड़ा कितना झावाना पड़ता है, ज्ञानी को अगर रोग हो तो कर्म का
उपयोग वो तो अन्याय हो गया ना, अपने लिए दूसरी बात, ज्ञानी के लिए दूसरी बात हो गया, ऐसा नहीं। न्याय ऐसा भाव हो तो सोचना इस प्रकार का भाव हो तो शोषण में जाता है, क्योंकि न्याय ऐसा है कि जो हम हमारे लिए करें जाने के लिए इससे अधिक करें, न्याय है। अगर हम हमारे लिए नहीं करते तो हम किस के लिए, ऐसे मुनिराज होते हैं वो अपने कमंडल में से पानी नहीं पीते, त्रुषाल लिखे लगे और कमंडल में शौच के लिए निर्दोष पानी रखा हो, कैसा निर्दोष पानी होता है, सच्चे पानी नहीं रखते तो भी पिएंगे, पिएंगे नहीं तो पिलाएंगे भी नहीं, किसी तुषामन को पानी नहीं पिलाएंगे पारंपरिक रहनी, क्योंकि अपने लिए नहीं पीते, उतना ही नहीं वो पिलाने के लिए दूसरे को बोलेंगे भी नहीं, क्यों? कि दूसरा अगर हमको पानी ला के देता है तो वो नहीं पीता। मुनि जो है विस्तार पानी नहीं लेता, प्राण चले जाए तो पानी का एक बिंदु नहीं जाए। तो आहार के वक्त पानी ले लिया तो ले लिया, बाकी कोई रोग आ जाए और पानी की इतनी कृपा लग जाए और प्राण चले जाए तो चले जाए। वो पानी पिएंगे नहीं, दूसरे से पीने की व्यवस्था को स्वीकार करेंगे। उसमें इतनी बात है कि मित्र महात्माओं को नमस्कार उतना नहीं लिखा है, अभेद भाव से नमस्कार। ये अभेद भाव क्या होता है? क्योंकि करणानुयोग में हमें ऐसा समझ में आता है कि हमारी ये आत्मा है, वो ईश्वर है, देवगुरु शास्त्र सत्पुरुष पर है। क्या समझ में आता है? देवगुरु शास्त्र और सत्पुरुष है, वो पर है और हमारी आत्मा स्व है। इसलिए स्व में हमें अभेद होना है, पर के प्रति हमारा परिणाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा हम सीखते हैं। द्रव्यानुयोग का अभ्यास करने में ऐसा सीखते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा कब होता है कि जब देव गुरु में सत्पुरुष में अभेदता आती है, बाद स्वरूप में अभेदता आती है। क्या एक बहुत प्रयोजनभूत और समझने लायक एक बात के देव गुरु सत्पुरुष अभेद बिना, अभेद भाव प्रकट किए बिना, अभेद भाव की योग्यता बिना, इसके पहले हम दुनिया योग पढ़कर के स्वरूप में अभेद होना चाहते हैं? कभी होने वाला एक ऐसी अनिवार्य परिस्थिति इसमें आती है कि संत में, सदगुरु में और सर्वज्ञ में और आत्मा में भेद नहीं रहता है। हमारी आत्मा और उसकी आत्मा में भेद नहीं रहता है। इतना अभेद भक्ति भाव जब आता है, बाद में स्वरूप में अभेदता आती है। इसके पहले कभी किसी को अभेदता आई नहीं, ना आने का कोई सवाल पैदा होता है। वो विषय थोड़ा हमारे तत्व ज्ञान के अभ्यास में कम चलता है, क्योंकि भक्ति का विषय है ना, इसलिए कम चलता है। परंतु एक ऐसी परिस्थिति आती है, जैसे घड़ा ऊंधा पड़ा है, वो आड़ा हुए बिना कभी सीधा हुआ घड़ा भी, करोड़ों घड़ा ऊंधा में से सीधा हुआ, लेकिन एक भी आड़ा हुए बिना सीधा नहीं हुआ। ऐसे पर पदार्थ से हमने अभेदता की है, राग से हमारी अभेदता वर्तती है ना। अब हम स्वरूप में अभेद होना चाहते हैं, परंतु देव गुरु और सत्पुरुष में अभेद हुए बिना कोई स्वरूप में अभेद हो सकता? ऐसी एक परिस्थिति जिसमें आती है, इस परिस्थिति में आना कोई कृत्रिमता से तो बन सकता नहीं, सहजता से आना हुए। इनके उपकार का मूल्यांकन होने पर ऐसी अभेदता उत्पन्न हुए, अभेद भक्ति नमस्कार हुए, तब आत्मा में अभेदता है। ये संकेत है, कृपालु देव का संकेत है, हेडिंग में ये संकेत पड़ा है। ऐसा नहीं लिखा निष्प्रु आत्माओं को अत्यंत भक्ति से नमस्कार, ऐसा नहीं लिखा। अभेद भाव तो अत्यंत भक्ति से आता है, यानी पराभक्ति से आता है। भक्ति को हो, अनन्य भक्ति को हो, पराभक्ति को हो, सब एक ही बात है। लेकिन ऐसा अभेद भाव इनका उपकार का मूल्यांकन होने पर ऐसा आनंद नहीं, इसके बिना नहीं आ सकता। तो बाद में आत्मा से अभेदता आएगी, इसके पहले अभेदता नहीं आएगी। कितना भी न्याय न्याय करे ना, नहीं उपकार बुद्धि, उपकार बुद्धि से ऐसे अभिता आती है। और उपकार बुद्धि जिसको उपकार हुआ हो उसको मालूम पड़ती है, बौद्धिक स्तर पर वो मालूम नहीं पड़ती है। क्या है ये सब बात हम समझते हैं लेकिन बौद्धिक स्तर पर उसका सही समझ नहीं आता, इसलिए तो अपने यहाँ वो प्रकरण चलता है। गुरुदेव को उपकारी जानना मानना एक बात है, अपने गुरुदेव का सच्चे विराजमान किया नहीं, क्यों हमारे उपकारी है इसलिए किया, दूसरे का क्यों नहीं किया, गुरुदेव का किया कि हमारे प्रत्यक्ष उपकारी थे। तो उसको जानना मानना एक बात है और उपकारी लगना वो दूसरी बात है। क्या लगना वो बिल्कुल दूसरी लगता है कब, कि जब हमारी आत्मा पर इसका उपदेश का असर पहुंचकर उपकार होता है तब, और तब वो प्राण से अधिक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, बस प्राण से अधिक हो गया तो फिर प्राण से अधिक एक आत्मा है, तो आत्मा और ममा कोई अंतर नहीं है, एक के भाव हो गया। एक के भाव कहो पराभक्ति को हो अभेद भक्ति को हो सब एक की बात है।
तो जो मंत्र का है ये गुप्त मंत्र का
है ना, ये गुप्त मंत्र है, सही बात है, गुप्त मंत्र, गुप्त मंत्र इसलिए कहा है कि बौद्धिक स्तर पर ये बात समझ में नहीं आती है, चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान हो बौद्धिक स्तर पर ये बात समझ में नहीं आती है। हम बोलते हैं अनंत उपकारी परम कृपालु सद्गुरु देव की, अनंत उपकारी बोलते हैं लेकिन अनंत शब्द सस्ता हो गया, बात बात में हम अनंत लगा देते हैं, आपने हमको अनंत का दुख पहुंचा दिया ऐसा बोल देंगे, कोई दुख पहुंचाएंगे और ज्यादा दुख लग गया तो अनंत का दुख पहुंचा दिया। ये अनंत शब्द क्या होता है, इसका अंत नहीं उसका आनंद, लेकिन जो रूढ़ी में आ जाता है शब्द उसका भार्थन और उसका आशय समझ में नहीं होता। ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है, जिसका प्रत्यक्ष उपकार हुआ हो उसका ज्यादा आएगा, ऐसा बना। सोनगढ़ में कुंड आचार्य का नाम ज्यादा है, कहीं भी लिखो कुंड कहान ऐसा शब्द लगेगा, तो आचार्य तो बहुत हुए, सुमन भद्र आचार्य हुए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े बहुत आचार्य, समर्थ आचार्य हुए, पुष्पदंत महाभुदबली आदि सत्यन आचार्य वगैरह बहुत हुए, गौतम खंड गौतम स्वामी भी हमारे आचार्य सर्वोत्कृष्ट आचार्य, तो गौतम स्वामी हुए आचार्य शिरोमणि, तो कंसरदेव होते हैं वो आचार्य शिरोमणि है। हम कुंदकुंद का नाम क्यों लेते हैं, मंगलम भगवान वीरो सर्वज्ञ देव, मंगलम गौतम गौतमो गणे, उसके पहले तो दूसरा नंबर गौतम स्वामी, मंगलम कुंदकुंदार्यो, तो बाद में आया, फिर भी हम इसका प्रयोग ज्यादा क्यों करते हैं, इसलिए हुआ है गुरुदेव को कुंदकुंद स्वामी का समय सार का उपकार हुआ। तो गुरुदेव के मुंह में ये बात बहुत प्रचलित हुई, कुंदकुंदाचार्य का जो नाम है वो गुरुदेव के मुख से श्री मुख से बहुत प्रचलित हुआ, वरना तो हम जानते नहीं थे बहुत बात, तो लोग तो दिगंबर है ही नहीं हमारे लोगों में, ज्यादा तो गैर दिगंबर है ना, कुंदकुंद स्वामी का नाम तो गुरुदेव के हिसाब से सबके मुंह में आने लगा, तो एक विद्वान आए थे परमागम मंदिर का जो प्रतिष्ठा थी सोनगढ़ में, तो बड़े विद्वान आए थे हिंदुस्तान के, नामी विद्वान थे। तो जब देखो कुंड 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 भी है, कहीं लिखे तो कुंड कुंड भवन, क्या कुंड कुंड एक आचार्य के नाम पर दूसरे महान आचार्यों का क्या बलिदान हम दे सकते हैं, ऐसा करके बोले। बहुत कठोर बात बोल दिया उसने अपने भाषण में, तो गुरुदेव को वेदना हो गई। अरे अरे अरे, ये पंडित क्या बोलता है, सभी आचार्य महान हैं, लेकिन कुंड कुंड आचार्य का हमें उपकार हुआ इसलिए हमारे मुंह में इसका नाम ज्यादा आता है, कोई अनादर थोड़ी ना करते, कोई आचार्य का अनादर करते, लेकिन उनको ऐसा लगा कि इसका नाम ज्यादा लेने में दूसरे का अनादर है। अभी उसको वादा उठाना चाहिए था तो दूसरा आचार्य का बलिदान क्या दे दिया, आगे भी बहुत हुए पीछे भी बहुत हुए, हाँ बहुत हुए, तो वहां तो वादा नहीं उठाया, वादा उठाया तो बहुत दुख हुआ। अरे अरे, हमारे ये तो सभी आचार्य पूज्य है, किसी के अपूज्यता और अनादर हमारे सपने में भी नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ कुछ आचार्य का हुआ है ज्यादा आता है। इसलिए और उसमें सब जाते हैं, अगर किसी के एक प्रत्यक्ष उपकारी का नाम लो, नाम लेकर के भक्ति करो, तो उसमें अनंत का समावेश, तीनों काल के अनंत का समावेश हो ही जाता है। और एक का अनादर करो तो अनंतों का अनादर हो ही जाता है, लेकिन वो जानते नहीं है। ये वस्तु थी, ऐसा ही बनेगा। अच्छा, ज्ञानी बहुत हुए, हम गुरुदेव का नाम क्यों ज्यादा लेते हैं, गुरुदेव से अधिक और गुरुदेव से कम, बहुत ज्ञानी हुए हैं नहीं हुए क्या, ज्ञानी इतिहास में ज्ञानी कितने हुए, अनंत ज्ञानी हुए, हम गुरुदेव का नाम क्यों लेते हैं। क्या इसका अर्थ ये अर्थघटन ये हो सकता है कि हम दूसरे ज्ञानी का अनादर करते हैं, ऐसा होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो फिर इस प्रकार का तर्क उठा कहां से। ईर्ष्या मात्सर्य अनादि की जीव की एक त्रिकृतिगत दुष्टवृत्ति है। आप किसी एक को ज्यादा सम्मान करोगे तो दूसरे को इसकी ईर्ष्याएं बिना नहीं करोगे। आप कहीं भी करो ना, किसी भी करो ना, ये बात ईर्ष्या जिसको है उसको खड़ी होने वाली है। सही बात बोली आपने, ये मात्सर्य में से पैदा होता है, ऐसा मात्सर्य होता है। इनको ज्यादा क्यों करते हैं, इनको आगे क्यों करते हैं, इनको मुख्यता क्यों, इनकी विशेषता क्यों, अरे भी इनमें सब आगे, इनके उपकारी हो तो यही बात आएगी, सब आगे। नाम लेकर भक्ति करने में कोई दूषण नहीं है, तो दिखते हैं देखो तेर में, तो एक संगना तो है लेकिन इससे ज्यादा दोष है उसमें, एक संगना का दोष भी ज्यादा दोष है ईर्ष्या का उसमें। सवाल वो उपकार भी हो तो बात ही नहीं रहती, थोड़ी भी समझ हो ना तो ये बात नहीं है, ये तो थोड़ी भी समझ नहीं है, पर ईर्ष्या है तो सामान्य बुद्धि को भी मार करके खड़ी हो जाती है, थोड़ी भी उसमें समझदारी नहीं है। एक अंश साता से लेकर के पूर्ण कामता पर्यंत 213 नंबर का पुत्र है, को गर्व नहीं, सामर्थ्य का गर्व नहीं, गौरव नहीं, ऐश्वर्य की प्रतिमा रूप सत्पुरुष को हम फिर फिर करते हुए फरी फरी ने मैंने बार बार नाम लेकर स्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं ऐसा नहीं, नाम लेकर कर स्मरण करते हैं, नाम रूप से स्मरण करते हैं, उसका नाम लेंगे हम, उसका नाम हम छिपाएंगे, वो एक जगह वो बात आई है, 213 में नाम लेने की बात आई है, हम नाम लेकर स्मरण करते हैं ऐसे सत्पुरुष का। दूसरे जीवों को नुकसान तो भगवान के दिव्य बने खेली तब भी हुआ, क्या करें, गद्दा मिश्री खाएगा तो मर जाएगा, कौन गद्दा मर जाएगा, मनुष्य थोड़ी ना मिलता, तो भगवान के सुखदेव भगवान के जो मानी खीरी ने तो 363 नए मत पैदा हुए, नरक गति बंद थी, उसके पहले तो नरक गति भरत क्षेत्र में नहीं थी, यहाँ युगिल्या का क्षेत्र था, बाद में कर्म भूमि चालू हुई, नया काल शुरू हुआ, चतुर्थ तारा चौथा आरा, तो नरक गति भी चालू हुई लेकिन मोक्ष गति भी चालू हुई थी, हमें चालू हुई ही देखना है या मोक्ष गति चालू हुई वही देखना है, क्या देखना है, इसको अनंत लाभ हुआ, क्या अनंत, अनेक जीवों को अनंत अनंत लाभ हो गया, वो देखने की बात है। उत्कृष्ट मुमुक्षु को होता है, वैज्ञानिक होगी उत्कृष्ट मुमुक्षु, उत्कृष्ट मुमुक्षु को हो सकता है, और जो उत्कृष्ट मुमुक्षु है उसको ऐसा भाव आया तो वो ज्ञानी बनने का लायक हो गया, वो तो अल्पकाल में ज्ञानी बन जाएगा। मन में नाम लेना, बाहर में जोर से नहीं लेना, मन लेना, परिणाम को तो कोई मना नहीं कर सकता, प्रवृत्ति में मना कर सकते हैं, तो प्रवृत्ति में हम सीमित कर सकते हैं, हमारी प्रवृत्ति को हम सीमित कर सकते हैं, छिपाएगा नहीं, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो भाव देख करके थोड़ा सीमित करे तो ठीक है, अच्छी बात है ना, अपने का क्या, तो फिर तो कोई खिंचाता नहीं होगी, खिंचाता नहीं होगी तो अपना परिणाम में भी गड़बड़ होगी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके प्रवृत्ति कर, तो उसमें कोई इतनी आपत्ति नहीं, आपत्ति नहीं। है ही बहुत अच्छा है, 201 में जरा ज्यादा बात किया है, 213 से भी थोड़ा ज्यादा किया है, बात लिया है परम ब्रह्म के, बात लिया है केवल निर्विकार होने पर भी परब्रह्म प्रेममय पराभक्ति को वश है, यह हृदय में जिसने अनुभव किया है ऐसे ज्ञानियों की गुप्त शिक्षा है, ऐसी पराभक्ति करना वो गुप्त शिक्षा है, खुली शिक्षा नहीं है लेकिन तो वो बात समझाने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत का एक दृष्टांत दिया है कि आज के प्रभात से पहले पैराग्राफ से बात करें, निरंजन देव मैंने हमारे आत्मा की अद्भुत कृपा अनुग्रहता प्रकाशमान हुई है, और आज घना बहुत दिन के बाद हमने चाही इच्छित चाहे वैसी पराभक्ति कोई अनुपम रूप में उदय को प्राप्त हुई है। और गोपी गोपियां भगवान वासुदेव कृष्णचंद्र को महीमे ने मक्खन की मठोकी में डाल करके बेचने को निकली थी, ऐसी एक कथा श्रीमद् भागवत में है। वह प्रसंग हमको बहुत स्मरण में आया, क्या कहते हैं? ये प्रसंग हमको बहुत स्मरण में आया। पत्र लिखा है सौभाग्य भाई के ऊपर, सौभाग्य भाई को बहुत भक्ति थी कृपालु देव पर, इनको भागवत की कथा सुनाई और एक कथा सुनाई, तो देखो क्या अभेद भाव था। वो भूल गई कि मटोकी में मक्खन नहीं है, मटोकी में तो भगवान भाग। मैंने बाजार में भी वो भगवान को देखते थे, व्यापार में भी वो अपने भगवान को देखते थे। ऐसी अभेद दशा आती है, बस नजर में दूसरी चीज आवे ही नहीं तो प्राप्ति एक भाव हो जाता है। और एक भाव जब होता है फिर आत्मा में एक भाव होता है, ऐसा सपुरुष में एक भाव, कार्य पुरुष में ऐसा एक भाव होता है, तब आत्मा में एक भाव होता है। ये तो बात रही ये हीडिंग की, पत्र का प्रारंभ होता है। यह पत्र जो है यह सभी मुमुक्षु जीव को दूसरे सब विकल्प को दूर करके इस एक यहाँ लिखी हुई बात पर बारंबार विचार करने के लिए है, सभी मुमुक्षु के लिए दूसरे धर्म साधन के विकल्प को छोड़ करके सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए। जीव को परिभ्रमण करते हुए अनंत काल हुआ फिर भी उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती और वह क्या करने से हो, बस इतना वचनामृत है। कितना जीव को मैंने अपना लेना है, दूसरे की बात नहीं है। जीव को अपने आप को यह प्रश्न पूछने लायक है, प्रश्न लिखा है ना, तो यह प्रश्न अपने आप को पूछने लायक है कि हम परिभ्रमण अनंत काल से कर रहे हैं फिर भी यह परिभ्रमण का नाश नहीं हुआ है और वह क्या करने से हो। यह प्रश्न हमको हमारी आत्मा को टटोलने के लिए करना जरूरी है। दूसरे सब विकल्प को दूर करके कंडीशन रखा है, क्या बात है इसमें, कि हम धर्म के अनेक प्रकार के साधन करते हैं और गुरुदेव की कृपा से आजकल हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, तो ये प्रश्न हम करते हैं कि नहीं करते हैं हमारे आत्मा को, इसका ध्यान खींचता है कृपा गुरुदेव। हमारे लिए वो जो लागू पड़ता है वो बात है कि हम ये प्रश्न हमारी आत्मा को करते हैं कि नहीं करते हैं, इसलिए प्रश्न उठाया है कि परिभ्रमण करते हुए हमारे जीव ने धर्म साधन में कोई कसर नहीं रखे। यम नियम संयम आप कियो पुनि त्याग विराग थाग लियो वास लियो मुख मौन रहो दृढ़ आसन पद्म लगाई दिए। सब शास्त्र के नए धारी ये मत मंडन खंडन बहुत कियो, मैंने हमने सब कुछ बहुत किया है परिभ्रमण की निवृत्ति नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई ये प्रश्न इसलिए उठाना जरूरी है कि कहीं ऐसा अनंत काल में अनंत धर्म साधन किया वह साधन बार अनंत कियो तदपि हाथ हजी, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, रिपीटेशन तो नहीं चलता है, अनंत काल में अनंत धर्म साधन किए, कुछ हाथ में नहीं आया, परिभ्रमण मिटा नहीं, तो अब हम कर रहे हैं उसमें वो बात तो रिपीट नहीं हो रही है ना, इसका पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है। ये बात हमको हमारे आत्मा को पूछना जरूरी है, क्योंकि ऐसे पूछेंगे तो उसमें अनेक अर्थ समाये हुए हैं, उसमें इतना अर्थ भरा है, इतना अर्थ भरा है कि बहुत बात उसमें एक ही प्रश्न में भरी है। और उनका विचार हमें करना जरूरी है कि क्या रह गया। गुरुदेव वही बात दूसरे ढंग से करते थे, वो कहते थे कि हमने द्रविलिंग अनंत बार धारण किया, छह ढाला की गाथा बोलते थे वो, मुनिव्रत धार अनंत बेर ग्रीव को उपजायो, आत्मज्ञान बिना लेश सुख नहीं पायो। तो मुनिव्रत धार का दृष्टांत इसलिए छह ढाला में लिया और गुरुदेव भी इसलिए कि वो समर्थ के समर्थ दृष्टांत है। आज हम मुख से उतना साधन नहीं करते हैं जितना द्रविलिंगी ने साधन किया, उतना साधन तो हम नहीं कर रहे हैं। तो वहां कौन सी बात की कमी रह गई, ये बात हमारे प्रयोजन की है। एक प्रयोजन की बात पर हमारा ध्यान नहीं रहा तो अनंत काल में जो हुआ है उसका ही पुनरावर्तन हो जाएगा और परिभ्रमण चालू रह जाएगा। कितने अनंत काल रहेगा और कितने अनंत काल में कितना दुख हो जाए उसका कोई सीमा नहीं है, उसका कोई हिसाब किताब निकालना वाली हो कि कल तो अपने यहां खाएगी, जमाएगी तो दिखरेगी, लेकिन आज तो उतना रोएंगे कि बात छोड़ दो। और अपने परमात्मा के लिए जुड़ना आई कि नहीं आई, एक बहुत विचित्र बात है। तो ऐसा हुए बिना मार्ग के अंश का अल्प भाग भी नहीं होता, दूसरे सब विकल्प दूर करके, दूसरे सब विकल्प ये जुड़ना के सिवाय, इस इसके विचार के सिवाय, इस प्रश्न के गहराई में गए बिना, जो पढ़ लिया ने, पूजा कर लिया ने, समसार पढ़ लिया ने, हुआ बात में कोई दम है नहीं है। कैसे ऐसे मैं तुम मतलब इसमें ऐसा है कि भावुकता और भावना दो अलग अलग चीज है। भावुकता दूध के उफान जैसी होती है, आती है भी जोर से और चली जाती है भी तेजी से, तो उसका तो कोई असर आत्मा नहीं है। जो भावना होती है ना, वो भावना जहां तक भावना को के अनुकूल पर्याप्त लाभ नहीं होता है वहां तक वो भावना शांत होती नहीं है। भावुकता शांत हो जाएगी, भावना शांत नहीं होगी। इसलिए भावुकता से कोई रोता है तो आज रोता है तो कल हंसने लग जाएगा, ये बात हो जाएगी। भावना में तो इस तरह से आए कि बार बार इसका ही विचार करे, बारह भावना है इसके लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छा आयोजन है बारह भावना का, उसमें वो बात है बारह भावनाओं में वो लेना। लेकिन जहाँ तक जुड़ना नहीं आवे वहाँ तक दूसरे साधन में मत जाना, ये ज्ञानियों की आज्ञा है, वो आज्ञा को हमको पालन करना है। अगर हमें मार्ग चाहिए तो बाकी मार्ग का एक अंश का भी भान होने वाला नहीं है, ये बात जरूर है। वो उसने अपने अनुभव से वो बात किया है, थोड़ा विस्तार से लेंगे। तो बात तो अनंत 195 में जो है वो अनंत अर्थ है, वही कहने का अभिप्राय है। अनेक में अनंत कहने का ही अभिप्राय, इसका अर्थ वो है कि इसके गहराई में जाता है तो बहुत से अंदर खोज चलती है, बहुत से पहलू सामने आते हैं, बहुत से हमारे जो विपरीत संस्कार है वो सामने आते हैं, बहुत से अवरोध है उसका मालूम पड़ता है, बहुत सी बातें मालूम पड़ती है, ऐसा कहने का अभिप्राय। हाँ, तो योगा करके उसका अर्थ निकालना है, ऐसे समाधान करके।
सांझे 8-9